बाबा की पालना देखकर सभी को कैसा लगता है? लगता है ना पालना? क्या फीलिंग होती है? हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं बाबा। कितना शुभ सोचते हैं हमारे लिए, वाह। और हम अपने लिए, हरि भाई? अच्छा, और भी शुभ सोचते हैं आप? अच्छा, तो बाबा की पालना कितनी सुखद होती है सभी को अनुभव होता है ना? कितनी पालना दे रहा है बाबा कि चारों युग हम उसके गुणगान करते रहें। दो युग मार्जिन नहीं होती, पर दो युग तो करते ही रहते हैं। आज सवेरे की मुरली बहुत अच्छी थी ना? मोस्ट बिलव्ड है बाबा, इसलिए तो तुम 2500 साल से याद करते आए, बुलाते आए। तो पहले भाग्य की पॉइंट्स, बाबा की मुरली में दो तीन बातें इम्पोर्टेंट थी, और सभी जानते हैं कि बाबा बहुत जोर दे रहा है इस बार, सदा खुश रहो। कभी कभी शब्द वापिस कर दो मुझे, क्यों ले लिया है तुमने ये? कभी कभी शब्द को वापिस कर दो, सदा खुश रहो हर मुरली में आ गया है। सबने इसके लिए जरूर कोई अच्छा प्लान बनाया होगा, हमें सदा खुश रहना है। एक खुशी बाह्य खुशी होती है, पर हमारी खुशी पूरी अलौकिक है। बाह्य रूप से भी हम खुश रहें और आंतरिक रूप से भी। और भाग्यवान आत्माओं का चेहरा खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, किस्मत भाग्य को ही कहते हैं, और हाथों में हाँ ज्ञान, जैसे दिया जाता है ना, वैसे तो बुद्धि में होता है, पर रेखाएं हाथ पर दिखाई देती है, और पैरों में सदा बाबा यही बोलते हैं, कदम में पदम, और दिल में दिलाराम, और होठों पर मुस्कान, ये बाबा को दिखता है। सबके हाथ तो देखते नहीं, फिर भी दिखता है बाबा को, सब दिखता है। उसके भाग्यवान बच्चे बैठे हैं। क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमारे सभी जन्मों को जानते हैं। हम केवल वर्तमान में रहते हैं और बाबा हमारा सब कुछ देखते हैं। ये सचमुच महान आत्माएं हैं, भाग्यवान हैं। बस इन्हें उसकी पहचान हो जाए, नशा हो जाए, स्मृति रहने लगे। तो अब हम एक तीसरी बात थी बाबा ने लास्ट में कही, ब्रह्मा बाबा जैसे क्या? त्याग, तपस्या, सेवा, एक ही लाइन बोली बस। बोल तो सब कुछ दिया है बाबा ने, सब कुछ सुना ही दिया है। 10 पॉइंट बाबा के निकाले हुए, बाबा को वो भी याद था, उनको फॉलो करो। तब हम पहली चर्चा करेंगे भाग्यवान आत्मा की पहचान क्या होती है। ये तो बाबा देखता है, पर हम दुनिया में भी और अपने यहाँ किसे भाग्यवान कहेंगे? किसे कहेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण दूं, किसी के पास बहुत संपदा हो, संपत्ति हो, ठीक है, तन अच्छा हो, स्वस्थ, परिवार बहुत अच्छा हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, दुनिया में कहा जाता है पत्नी चरित्रवान हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, पर्याप्त धन संपदा हो, ये श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है। और सोचे अब हम बाबा के पास, सुरेश भाई हेल्थ भी अच्छी है, और सोचें संदीप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, और भी तो सोचो, जैसे जो भी काम करें सफल हो। दुनिया में भी जानते हैं सभी किसी व्यक्ति को हर काम में बाधा आती हो तो कहेंगे ना इसका भाग्य साथ नहीं देता है, बेचारा जो करता है बाधा आने लगती है। हर कर्म निर्विघ्न सफलता मूर्तम बन जाए तो ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। और अब ब्राह्मणों के लिए सोचना है हमें, श्रेष्ठ भाग्य जो उमंग उत्साह में रहते हो, ये भी बहुत बड़े भाग्य की पहचान है। और सोचो बोलो, हाँ ये भी जो अमृत वेला और मुरली का संपूर्ण सुख लेते हैं वो भी बहुत भाग्यवान हैं। और जो योग युक्त हैं वो तो सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं। जो दूसरों का भाग्य बनाते हैं वो भी बहुत भाग्यवान हैं। चाहे हम ज्ञान देकर बनाएं, चाहे यज्ञ सेवा करा के बनाएं, चाहे किसी का धन से भाग्य बनवाएं, ये सब श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है। पीछे वाले बताएंगे श्रेष्ठ भाग्य। माताओं को लगता है हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, क्या देखकर? क्योंकि भाग्य विधाता ही हमारा है, सबसे बड़ा भाग्य भगवान ही हमारा है, इससे बड़ा भाग्य तो और कोई नहीं हो सकता। हम सोचें संसार में बहुत लोगों को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, बहुतों को, थोड़े नहीं करोड़ों करोड़ों, कि उन्हें लगता है हमारा कोई सहारा नहीं दुनिया में। और हम, भगवान सहारा है, वो हमारा साथी है, बहुत बड़ा सपोर्ट उसका मिल गया है। जब वो ये कह देता है, कल भी कहा, जो कुछ भी आए मुझे दे दो, देना आता है, काम भारी है थोड़ा देना। जबकि कोई अच्छी चीज नहीं मांग रहा है, संपत्ति मांगे तो भारी भी लगे, लेकिन वो चीज मांगता है जो हमें भारी लगती है। तो इसलिए बाबा ने पूछा, देना आता है, देना भी एक कला है। दे तो हर व्यक्ति देता है कि बाबा ये समस्या है तुम संभालो, परंतु आगे क्या होता है, हैं? फिर आ जाती है। नहीं और कुछ बोलो, और कुछ भाई, बीच में कोई कुर्सी है, दो महान आत्माएं खड़ी हैं बाहर, ठीक है, खाली हो तो बैठ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ भाई, नीचे बैठ सको तो, हैं? हाँ आ जाओ आगे, ये कुर्सियां हैं तो सही, भेज दो, बस देखो एक तो पीछे रख दी, ठीक है। तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, ये सब भाग्य विधाता ही हमारा है, लेकिन बाबा को सब कुछ देकर हम निश्चिंत हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म बात है। और निश्चिंत कब होंगे? जब बाबा की शक्तियों में हमें विश्वास हो और इसका हमें अनुभव हो गया हो कई बार कि अगर हम बाबा को दे देते हैं तो बाबा बस गई बाबा के पास और वो सब कुछ ठीक कर देगा, इसका हमें अनुभव हो। मैंने पहले भी शायद यहाँ एक कहानी सुनाई हो, सिर्फ पुराण की है, के रावण की बहुत अच्छी कहानी है ये, मैं सुना देता हूँ आपको, काम आएगी सुनाने में भी। तो रावण, रावण नहीं था जो बाद में दिखाया, उस समय का बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान, शिव का बहुत बड़ा भक्त, तो सोने की लंका निर्माण करने का, अब कहानियां तो अलग अलग होती हैं, तो पार्वती को इच्छा हुई हम झोंपड़ी में ही रहेंगे सदा, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, तुमने सबके लिए बड़े बड़े काम कर दिए हैं, चलो बनाओ। तो कुबेर से धन लाना था, बहुत शिक्षात्मक बात है। तो रावण कुबेर के पास जाता है, कि महादेव के लिए सोने का महल बनाना है, धन चाहिए। कुबेर उसको फटाफट देता है क्योंकि महादेव के लिए बनाना है। बन गया मकान, महल बन गया, अब मुहूर्त घर गृह प्रवेश। तो रावण ही सबसे बड़ा पंडित था, तो चलो भाई तुम गृह प्रवेश की करो सब अनुष्ठान। कर दिया, अब दक्षिणा देनी है। पार्वती को बहुत समझाया था महादेव ने कि हमारे भाग्य में महल नहीं है, झोंपड़ी है, हम उसमें ही सुखी हैं। लेकिन पार्वती को भाता नहीं था कि दूसरे सुखी रहे, हम झोंपड़ी में रहे। अब रावण बहुत बुद्धिमान था ना, शिव का भगत भी था। उसने क्या सोचा कि इसी महल में शिव पार्वती भी रहेंगे, तो क्यों ना मैं यही मांग लूं। उसने कहा कि अपने सहित ये महल ही मुझे दे दो दक्षिणा में। महादेव जी ने कहा था अस्तु, वहां तो जो मांगेगा वो मिलेगा। लेकिन साथ में ये कह दिया, जहां मेरा मेरा है वहां मेरा वास नहीं है, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं अपने परिवार के साथ फिर से कैलाश पर्वत पर। इसमें सीखने की बहुत अच्छी बात है ब्राह्मणों के लिए, आप सबके लिए भी, पर जिनके लिए मैं कहना चाहता हूं वो भी सुन लेंगे। कुबेर धन किसके नाम पर दे रहा था रावण को? शिव के नाम पर। और रावण ने फिर क्या कर दिया? मेरा। अगर वो अपने नाम पर महल बनाने जाता तो कुबेर देता? हमें भी सब कुछ किसके नाम पर मिलता है सेंटरों में? माताएं किसके नाम पर देती हैं? अगर बहनें आपसे मांगे देंगी? नहीं, बाबा के नाम पर। और फिर लेने वाले क्या समय लेते हैं? मेरा। तो जहां मेरा मेरा हो गया वहां बाबा नहीं रहता। ठीक है, पसंद है कहानी? तो हम सभी बाबा की इन बातों को बहुत गहराई से समझे। मैं तो बाबा को आजकल देखता ज्यादा हूं, स्क्रीन सामने होती है ना बड़ी बड़ी, बाबा का हर एक्सप्रेशन, उसका चेहरा, मैं सोचता हूं जो सामने बैठा है कौन है वो, जानते हैं ना आप, और कितना भोला है। कोई किसी को कहे भगवान बैठा, कह गए तुम्हारा दिमाग खराब है, भगवान बैठा है, कितना भोला है। कोई फीलिंग नहीं दे रहा है कि मैं मास्टर, वो मैं सर्वशक्तिवान हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं चाहे तो सेकंड में सब कुछ कर सकता हूं, कुछ फीलिंग नहीं दे रहा है। बिल्कुल भोला नाथ बनकर बैठा है। किन कहां बैठा है? अपने परिवार में। एक मिलिट्री का जनरल सेनापति जिसके हाथ में 25 लाख सेना भारत की, वो जब फील्ड में होता है, अम्मा सबको तो पता नहीं होगा, जब जनरल अपने घर से चलता है ना बाहर निकल के, तो खड़े होते हैं सैनिक सलूट देने के लिए और म्यूजिक वाले बाजे बजाने के लिए। लेकिन वो जब घर में बच्चों के साथ बैठता है तो कोई बच्चे उसे डांटेंगे भी, पापा ये ठीक नहीं, आपका ये काम आप गलत करते हो, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। होगा या नहीं? माताओं को तो अनुभव है ना, बच्चे आपको पूरी तरह डांटेंगे, तुम अच्छी नहीं हो, कहने में देर नहीं करेंगे, पापा कितना बुद्धिमान हो, तुम अच्छे नहीं करते। ये वहां भी दिखाया है एक जगह, मैं देख रहा था एक दिन, मुझे किसी ने बताया एक्चुअली, कि जो वो था ना उसका लड़का कार्तिकेय, वो एक दिन शिव से नाराज हो गया और कहने लगा पापा तुम तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। पार्वती उसे समझा रही है कि महादेव ने ही तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाया है, तुम्हें योग्य बनाया है, अपने पापा का सम्मान रखना चाहिए, तुम्हारा क्या है? परिवार। तो भगवान भी कहां बैठता है? इसलिए अपना वो विशाल रूप नहीं, क्योंकि जिनके बीच में बैठा है वो भी कौन है? वो भी तो छोटे नहीं है ना, ऐसा तो नहीं वो भगवान और सामने बैठने वाले वैसे ही, वो भी तो संसार की महान आत्माएं हैं ना, इष्ट देव देवियां हैं, चुने हुए रतन हैं। उनमें से न जाने कौन बाबा को बहुत आकर्षित कर रहा हो, किसने बाबा के लिए या भारत के लिए या धर्म के लिए पूर्व जन्मों में बड़े बड़े काम कर दिए हों, ये हम तो नहीं जानते, उसके सामने सब स्पष्ट होता है। तो बिल्कुल भोलानाथ बनकर बैठता कि तब प्यार देता है, बाबा को अच्छा नहीं लगता क्या? कल की बात याद करो, अकेले रहना। अगर आप इसे याद करेंगे तो आनंदित रहेंगे सारा दिन। बाबा को अच्छा नहीं लगता अकेले रहना। माता को किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारे चार बच्चे तो रहेंगे अलग अलग, तुम रहना अलग कमरे में, मिलेंगे भी नहीं वो कभी, तो क्या कहेगी माता जी? मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, तुम यहीं रहो, कहेंगे या नहीं? ये बाबा केवल हमें खुश करने के लिए नहीं कहता, हम सब उसके परिवार हैं, उसमें फादरली फीलिंग है, मदरली, माँ बाप की फीलिंग है। वो भी चाहता है मेरे बच्चे मेरे साथ रहें ऊपर, उसको भी जैसे सुख मिलता है, आनंद आता है, सब महान आत्माएं मेरे साथ हैं, तो ये बात हमें योगयुक्त बनाएगी कि हम बाबा के पास रहें, उसके साथ रहें, वो भी अकेला न हो, साथ हों हम सब। तो ये बहुत सुंदर बातें बाबा हमें कहते रहते हैं। पिछली क्लासेज में याद हो आपको, जो पहले थे, हमने खुश रहने के लिए एक 10 पॉइंट का प्रोग्राम बनाया था, वो तो मुझे भी याद नहीं क्या थी। अब दूसरा चिंतन करेंगे इस पर। वो बातें ये थी कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम क्या क्या याद करें जो खुश रहें। अब हम परिस्थिति छोड़ देते हैं, हम क्या क्या याद रखें जो हम बहुत खुश रहें। और अगर हमारी खुशी बहुत अच्छी होगी, करामात शब्द बोला बाबा ने कल, याद है, यानी खुशी कमाल करेगी, करामात कहते हैं चमत्कार, खुशी कमाल करेगी, खुशी परिस्थितियों को नष्ट करेगी, हमारी खुशी हमें योगयुक्त भी बनाएगी, और हमारा चेहरा कैसा रहेगा सब जानते हैं, सबको अनुभव है। तो खुश रहने के लिए हम 10 पॉइंट निकाल लेते हैं। अब सबसे प्रथम खुशी कौन सी है? वही जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, भगवान प्राप्त हुआ इस जीवन में। कोई हमें मिले या न मिले, कोई साथ दे या न दे, भगवान तो हमारा है। सोचें हम बिल्कुल अकेले हो जाएं। मुझे कई लोगों के फोन आते हैं, जिनमें फोन होते हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई, मुझे लगता है मेरा इस संसार में कोई नहीं। आज ही दो के फोन आए, दोनों ही टीचर थी, डिप्रेशन में आ गई हैं। मुझे लगता है मेरा कोई नहीं संसार में, क्यों हुआ ये सब? ये भूल गए, ये नशा ही नहीं रहा कि भगवान मेरा है, वो मुझे साथ दे रहा है, सारा संसार हमें छोड़ दे लेकिन भगवान साथ दे तो हमें संसार की परवाह होगी? बाबा का कभी का महावाक्य है, अक्षौणी सेना एक ओर हो और तुम अकेले दूसरी ओर, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। इनका नशा रहे, इनकी स्मृति रहे। मैं बहुतों को एक चीज सिखाया करता हूँ, माताओं को समस्या आती है, घर से निकाल दिया धारणाओं के कारण, ये केस भी अब बढ़ते जा रहे हैं। हम माताएं छोटी आयु में ज्ञान में आ गई, 25 साल की आयु ज्ञान में आ गई, अब वहां तो लड़ाई होनी है। बाबा हंसी में कहते थे ना एक बार साकार में कि मैं तो आता हूँ घर घर में झगड़े शुरू करा देता हूँ, जयंती से पहले घर घर में झगड़े। तो 25 साल की माता जी अभी शादी हुए, 2-3 साल ही हुए, अब पवित्र मैं तो पवित्र रहूंगी, तुम्हें जो चाहे करना है, निकलो घर से। निकाल दिए, अब उमंग में घर से तो निकल गए, लेकिन आगे तो आगे है ना। फिर तो मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, पैसा, परिवार कैसे, हम जीवन कैसे चलाएं, एक बच्चा है उसको कैसे पाले, कैसे पाले। सभी को स्थिति के महत्व का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं उन्हें कहता हूँ सबसे बड़ा खजाना है, अरे नहीं, भगवान हमारा है। अगर ये नशा रहे तो वो पैसे का इंतजाम स्वतः ही कर देगा। जिसके लिए आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, बहुत बड़ी धारणा अपना ली, क्या वो आपकी केयर नहीं करेगा? करेगा या नहीं? बहुत करेगा। थोड़ा सा सहन करना होता है और उसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। जब एक आत्मा घर छोड़ने को तैयार है, घर छोड़ देती है, तो सहन करने को भी तैयार रहना चाहिए। अन्ना जी आए थे ना कल बड़ा अच्छा बोलते हैं किचन में भी आए थे, निर्वैर भाई भी साथ थे और भी थे। एक तो हमारे भाई बहने भीड़ बहुत लगाते हैं ना, क्योंकि वो वीडियोग्राफी होती है ना कि हम भी आ जाएंगे टीवी पे, असली माया तो ये होती है। तो बिल्कुल धक्कम, माताएं धक्कम दुक्का कर रही थी, सब्जी में ले गए तो खड़ा ना होने में। तो बोलता बहुत अच्छा है, वो भाषण अच्छा करता है, सहज भाव से मेरा 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 इस पे किया, अपना सुनाता रहा। मैं तो मंदिर में रहता हूँ, एक बिस्तर है सोने का, एक प्लेट है भोजन खाने की, बाकी कुछ नहीं मेरे पास, इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। नींद उनको नहीं आती जिन्होंने मेरा मेरा बहुत कर दिया गया, जिनके जीवन पे दाग बहुत है, वो ये बोल रहा था पाप के दाग। तो बहुत अच्छा बोल रहा था कुछ कुछ, तो मैं देख रहा था कि ये व्यक्ति भी, इसके पास धारणाओं का बल ही तो है। कहा मैंने, मुझे कोई संस्था 1 करोड़ का कोई अवार्ड दे रही थी इनाम, मैंने उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया वो भी सुनाया, कि वो जो लोग थे देने वाले वो अच्छे नहीं हैं, पाप की कमाई है उनकी, मैंने उसको मना कर दिया, मुझे करोड़ नहीं चाहिए। तो मैं देख रहा था कि दुनिया में भी ये व्यक्ति बहुत समय से ज्ञान में, ज्ञान के संपर्क में रहा है और दूसरी बार यहाँ आया है। अब तो वो प्रसिद्ध हो गया ना, तो हम सब जानते हैं, जब पहले आया होगा तो बेचारा ऐसे सोशल वर्कर है, उस रूप से आया होगा, किसी ने उसको भाव नहीं दिया होगा। यहाँ आया, अपना शिविर आदि करके चला गया, तो वो अभी पंजाब से और दक्षिण तक, पंजाब में जलियांवाला बाग से शुरू करेगा वो अपनी यात्रा, एक अच्छा प्रचार। तो उसको सहयोग की जरूरत थी, तो वहीं पर रमेश भाई ने, निर्वैर भाई ने, दादी ने उसको ये कहा, जहां भी आप जाएंगे चलेगा ना वो, तो हमारे भाई बहन आपको मदद करेंगे, साथ देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे 500-700 युवक तैयार हो जाएंगे ये काम करने के लिए, हम चाहेंगे उसकी ट्रेनिंग कहीं हो तो आप लोग साथ देंगे। प्रश्न पूछा, भाषण में ही पूछा, तो भी फिर इन्होंने उत्तर दिया कि 5-7 हजार, 5-7 हजार जो भी होंगे उनका सब व्यवस्था, 5-7 दिन बस रहने की, खाने की, ट्रेनिंग की, हम अपने यहाँ रखेंगे। बहुत खुश हो गया। तो एक बार फिर बाबा ने भी, आपने तो देखा ही हो, बाबा खड़े हुए तो बाबा ने भी कुछ बहुत अच्छा अच्छा कहा। तो ये सब भी सेवाओं में मदद करेंगे कहीं ना कहीं। और देखो ऐसे निष्काम भाव से लोग काम करते हैं, कितना अच्छा उसका मुद्दा है कि सारा करप्शन समाप्त हो जाए। तो जो 1 रुपया सरकार देती है, जिसके 10 पैसे पहुंचते हैं जहां तक काम होता है, राजीव उसने कह दिया था ना राहुल गांधी ने पीछे, 1 रुपया सरकार देती है, 10 पैसे यूज होते हैं, 90 पैसे खा जाते हैं बीच वाले। तो अगर ये उल्टा हो जाए, रुपए में से 90 पैसे यूज होने लगे, 10 पैसे भी खाने वाले हों, चलो, तो तो भी कितना काम हो जाए देश में। तो उसको ऐसे साथियों की बहुत जरूरत है। तो बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कह दी, मनुष्य श्रेष्ठाचारी बनेंगे तब दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म होगा। किसे किसे सुधारेंगे, लोकपाल विधेयक भी पास हो गया, किस किस को जेल में डालेंगे, तो सारे ही ऐसे हैं। कोई पुण्य आत्मा मिलेगी वहां जो रुपए में से 90 पैसे खा जाते हैं? वो पुण्य आत्माएं कहां से मिलेंगी? तो बाबा फाइनल कर देता है उनकी समाप्ति, कर देता है ना समाप्ति, और श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा श्रेष्ठाचारी संसार की शुरुआत। तो हम सब खुश रहेंगे। पहली पॉइंट, भगवान ही हमारा है, सबसे बड़ा खजाना तो भगवान है। अगर हम इस नशे में रहें तो धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। चलो एक मिनट योग लगाएंगे। ऐश्वर्यपन दूसरी खुशी की पॉइंट। आज की मुरली सवेरे की बहुत सुंदर थी, याद है ना? मैं आता हूं तो तुम बच्चों के लिए स्वर्ग की बादशाही की सौगात लाता हूं। याद रखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट अब बोलेंगे फटाफट, खुशी की पॉइंट, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बोलो इंद्र प्रताप। चौथी पॉइंट, हाँ खुशी, खुशी के लिए संकल्प चाहिए। वो भी वो एक सिद्धांत है, खुशी में रहने के संकल्प, जिसको याद करते ही हम खुश हो जाएं। हाँ, रोज सवेरे सवेरे हमें भगवान पढ़ाने आता है। और पांचवी बात इससे जोड़ दें, जब हम उठते हैं उठते ही प्रभु मिलन उसकी पालना शुरू हो जाती है। ऐसा संसार में कोई नहीं। पांच बातें हो गई, अब पांच और निकालेंगे। बोलो पहली पॉइंट, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, बाबा वो ब्रह्मा भोजन हमें खिलाता है, हमारी पालना भगवान कर रहा है। ऐसे ले लें इसको पूरा, तो हम निश्चिंत भी होंगे, बहुत खुश भी होंगे, बेफिक्र बादशाह भी होंगे। भगवान स्वयं पालना कर रहा है, ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, ये हम समझ लें। हमारी केयर बाबा करता है, संभाल, हमारी संभाल। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं ना, बच्चे पढ़ते ना हो, खेलने में रहते हो, तो भी माँ बाप को ध्यान जाएगा, भाई पढ़ो, और कुछ सब जगह ध्यान जाएगा ना। हमारी केयर करता है स्वयं, सचमुच केयर करता है वो, हमारा हमें देखता है, हमारा ध्यान रखता है बहुत। दूसरी पॉइंट, हाँ बाबा हमें एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बना रहा है। तीसरी पॉइंट अमित बोलो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात, भगवान स्वयं मेरे साथ सोता है और सवेरे जगा देता है, गुड नाइट भी करता है, गुड मॉर्निंग भी करता है। हमारे दिन की समाप्ति बाबा के साथ और शुरुआत बाबा के साथ, बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाएगी ना। कोई भी जीवन में उलझन आती है और आगे चलें। बोलो पीछे वाले, तीसरी पॉइंट, तीसरी हो गई चौथी, तीन हो गई, चौथी बोलो, भगवान से हमारे सारे नाते हैं। दुनिया में किसी की रिश्तेदारी बड़े आदमी से हो जाए, तुरंत कदम भी बदल जाते हैं। एक माता बहुत नशे में रहती थी, मेरा फलाना संबंधी पुलिस कमिश्नर है, नजदीक का संबंधी नहीं था, दूर का। अब मुझे पता चला वो यहाँ शिविर भी करके गया, वो हमारे संबंध में है कहीं माता, तो उसको बड़ा अहंकार, मैं तो पूछता, मैं तो जाता भी नहीं और मुझे क्या मतलब, अहंकारी हो या कोई भी हो, नॉन वी के हैं। कहा उसको बड़ा अहंकार है, हमारा कोई रिश्तेदार पुलिस कमिश्नर है, अभी मुझे पता चला उनके कोई दूसरे रिश्तेदार यहाँ आना चाहते हैं, उनको बताया है, इसने अभी ये बन गया आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी में। तो वो यहाँ होके गया, कहता दो बार हो गया हूँ, आया हूँ और बहुत अच्छा है, तुम भी वहां जाओ, वो भेज रहा है। तो किसी की रिश्तेदारी किसी बड़े से हो, कितनी खुशी, कितना नशा रहता है। और हमारी रिश्तेदारी है, माताओं की रिश्तेदारी या नहीं है। अब पांचवी बात, अरे वाह वाह, वेरी गुड, स्वयं भगवान मेरे साथ रहने को लालायित रहता है। अब तक हम लालायित रहते थे भगवान के साथ रहे, अब भगवान लालायित है, वेरी गुड। और कुछ याद आता है, पॉइंट बढ़ा देते हैं 10 की जगह 12। हाँ, भगवान हमें सर्व खजानों से संपन्न बना रहा है, हमारे जैसा परिवार किसी को नहीं। एक माता को चार बच्चे हों और चारों बड़ी बड़ी पोस्ट पर हों, कलेक्टर हो बच्चा, लेकिन माँ भी अपने को कलेक्टर से कम नहीं समझेगी, होगा नहीं। हमारा परिवार जिसमें सब महान आत्माएं, जिसमें संसार के सारे हीरो एक्टर, एक एक्टर भी आया हुआ नीचे, शायद आया होगा अंसरोर में, सुमन साउथ का है कोई, बहुत फिल्मों में काम किया, शायद यहाँ लाए थे उसको से हमको, सुमन सुमन वहाँ नीचे भी था, उसने अनुभव भी सुनाया आज, और हमारे रुपेश भाई ने आज उसका इंटरव्यू भी लिया, कल रुपेश ने इंटरव्यू लिया अन्ना हजारे का, एक घंटा पीस ऑफ माइंड के लिए, आज इसका लिया सुमन का, इसलिए वो मेरे साथ आया भी नहीं, नीचे रह गया है। तो देखो, हम सभी का परिवार माताओं को नशा है या नहीं, ये अपने छोटे से परिवार का ही है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, इसी से परेशान रहते हैं, भगवान परेशान कभी नहीं होता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, होता है सबीर, भगवान परेशान होता है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, नहीं मानते, हम सब जानते हैं ना, हम सब कि हम उसकी बात नहीं मानते, फिर भी वो हमारी महिमा ही कर रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। सीख लें सभी, सीख लें, ये बहुत सुंदर तरीका है पालना करने का, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनमें सुसंस्कार डालने का, कि वो ये नहीं कह रहा तुम खराब हो, तुम बिगड़ गए, तुम बुरे संग में हो, ये हो गया वो हो गया, वहा बच्चे वहा, वहा मेरा भाग्य वहा। बाबा क्या करते थे, बाबा को भी नशा रहता है, मेरे सारे बच्चे विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। और भी माताओं को कुछ ख्याल आ रही खुशी नशे की बात है, बैठाया है, और बोलो आप क्या बोल रही, हाँ और बोलो, ये बहुत अच्छी बात है कि हम जहाँ भी चलते हैं बाबा की सातों जो गुण हैं उनकी किरणें उनका फोकस मुझे मिलता रहता है। तो हम सभी अपनी खुशी को बढ़ाते चले, इस तरह खुश रहेंगे तो जो बातें हैं वो छोटी हो जाएंगी, बातों में हम आ जाते हैं तो खुशी छोटी हो जाती है। एक बहुत सुंदर बात सब याद रखेंगे, लास्ट बात ये कहता हूँ आप सबको और इस पे चिंतन करेंगे, ये सुंदर बात है, हमारा लक्ष्य कितना महान है ना, महान, और ये बातें कितनी छोटी, चिंतन करें इस पर, बातें ही तो होती है ना जो स्थिति को बिगाड़ती है, हमें नीचे करती है, निगेटिव बना देती है, खुशी यज्ञ के प्रति भी प्यार नहीं रहता, सब लगते हैं सब बेकार हैं, सब स्वार्थी हैं, न जाने मनुष्य क्या क्या सोचने लगता है। हमारा लक्ष्य कितना महान है और ये बातें कितनी छोटी हैं। हाँ भविष्य का नसब बहुत अच्छा है, उससे बहुत खुशी होगी। तो इस तरह सभी अपने अपने पॉइंट निकाल के लिखें, जरूर 8 लिख लें, 10-12 लिख लें, और कुछ दिन उनको पढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के संकल्प। इनसे हमें बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति।
कल्प के भाग्य भवन की ये आ